ये वक्त थोड़ा हमारा आपस में मुजाकरे का होता है, और मुजाकरा इसको कहते हैं कि एक दूसरे को याद दहानी कराई जाए, और इससे ईमान वालों का नफा होता है। बहुत सारे मसाइल हैं हमारे जो आपस में मुश्तरक मसाइल हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, जो लोग बाहर हैं उनके भी हैं। तो जो हमारे बड़े अकाबरीन मशाइख गुजरे हैं, उन्होंने उन मसाइल की निशानदेही की है, और बड़ी लंबी फहरिस्त है उसकी। ये जो मौके होते हैं, जिक्र का हल्का हो गया या कोई दीनी मजलिस हो गई, तो कभी कोई मौजू सामने आ जाता है कभी कोई, और उसमें ये होता है कि फिर अगर अल्लाह की तरफ से तौफीक शामिल हाल हो जाए, तो फिर उसमें से कोई बात ऐसी अल्लाह पाक दिल में डाल देते हैं, कहने वाले के भी सुनने वाले के भी, उससे फिर आदमी की जिंदगी में तब्दीली आ जाती है। इसलिए बाज़ बुजुर्गों ने वो शेर भी बड़ा मशहूर है, एक जमाना सोबत बावलिया बेहतर सद साला ताआत बेरिया। कोई एक घड़ी किसी अल्लाह वाले की सोबत में आदमी बैठ जाए तो 100 साल की बेरिया इबादत से भी बढ़ जाती है। कैसे? कि वो कोई बात ऐसी पल्ले पड़ जाती है, कोई गिरा जहन में अटकी होती है, दिल के अंदर कोई खलिश चुभी भी होती है, जिसकी वजह से आदमी सही सही मानों में अल्लाह के साथ खालिस मुखलिस नहीं हो रहा होता, तो वो गिरा खुल जाती है, तो वो फिर अल्लाह के साथ बिल्कुल खालिस हो जाता है। और अगर इसी बात पे भी गौर करें कि क्या हम लोग अल्लाह के साथ खालिस हुए हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी सारा का सारा मामला तो अल्लाह के साथ है, अल्लाह के साथ मामला हमारा अभी पूरी तरह खालिस नहीं हुआ। कुछ अल्लाह की मान ली, कुछ अपनी भी चला ली, जहां मानने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई रुकावट नहीं आ रही, तो फिर तो मान ली अल्लाह की। और जहां जरा सी नफ्स पे चोट पड़ी, जरा सा मामला ऐसा आया कि भाई ये तो हमारा खानदानी रिवाज है, ये तो हमारा तो जरूरी है, ये भी जरूरी है, इसके बगैर कैसे होगा, उसके बगैर कैसे होगा, तो वहां पर कहते हैं अल्लाह बड़ा गफूर है। क्या कहते हैं? तो सही मानों में हम अल्लाह के साथ खालिस नहीं, अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस नहीं। अभी अगर हम एक जुमले में कहें तो हम अभी नफ्स परस्ती में ही मशगूल हैं, क्योंकि अल्लाह की जितनी मानते हैं वो भी उतनी मानते हैं जितना नफ्स हमारी इसमें मुखालफत नहीं करता, उतनी मान लेते हैं। तो दर हकीकत नफ्स क्यों मानते हैं? तो इसके लिए जो मेरे दिल में आ रहा है कि हम ये सोचें कि बहुत सारे हमारे मुश्तरका मसाइल हैं, उसमें से जो हमारे अकाबरीन ने ये फरमाया कि जो जहालत है, दीन से जहालत, दीन से दूरी, ये एक बहुत बड़ा सबब है इसका। क्योंकि इल्म की जो है वो तो कुरान है और हदीस है, और हम ये थोड़ा सा गौर कर लें अपने आप की, हमारी अपनी जिंदगी में, कि हमारी कुरान और हदीस के साथ कितनी मुनासिबत है, कितना कुरान हमने सीखा है, और कुरान के अंदर जो मजामीन हैं, अहकामात हैं, उनसे किस हद तक वाकिफ हुए हुए हैं। तो अगर हम बहसियत पूरी उम्मत के देखें तो कुरान और हदीस से बहुत दूरी हमें महसूस हो, जानते ही नहीं है। और واقعہ یہ ہوا کہ ہم عجمی لوگ ہیں، عربی ہماری زبان بھی نہیں ہے، تو جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ بھی چونکہ اس کا ترجمہ مفہوم نہیں جانتے، تو ہمارے پاس جو ابھی علم ہے وہ بس سنا سنایا سا علم ہے، کچھ ادھر سن لیا، کچھ ادھر سن لیا، کچھ ادھر سن لیا، اچھا اور کوئی پرکھنے کا معیار بھی نہیں ہے کہ بھائی صحیح بھی سنا یا نہیں سنا، جس نے جو کہا بس اس کو دین سمجھ لیا۔ تو کسی عالم محقق، کسی بڑے اللہ والے سے جو تحقیقی بات ہوگی نا قرآن و حدیث کے متعلق، وہی اصل علم ہوگا۔ اور یہ جہالت اس وقت امت کے اندر عام ہے، چھوٹے چھوٹا بڑا، غریب مالدار، مرد عورت، عورتیں تو بیچاری ویسے بھی اور بھی زیادہ، مرد تو چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ۔ تو دینی لحاظ سے جو یہ جہالت ہے اس نے ہمیں بڑا دین سے دور کیا ہوا، جانتے ہی نہیں۔ بڑا طبقہ ہے، بڑا طبقہ۔ اور میں آپ کو عرض کروں، اگر تھوڑا سا ہم اپنے ذہن کو اور وسیع کریں، تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو پاکستان میں پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ بات چیت سننے کو مل جاتی ہے، بڑے علماء کرام بھی ہیں، مشائخ بھی۔ اگر آپ پاکستان سے ذرا تھوڑا اور باہر نکل جائیں تو دنیا کے اندر تو بالکل ہی جہالت ہے، یعنی بالکل جو موٹے موٹے احکامات ہیں، ضروری ضروری جو باتیں ہیں، بنیادیں جو جس کو ہم کہتے ہیں دین کی، ان بنیادوں تک سے واقف نہیں ہیں۔ ایک صاحب سے ہمارے گھر تشریف لائے تھے، تو کچھ بات چیت ہوئی دینی، تو بہت اعتراض کرنے لگے کسی بات پہ۔ میں نے کہا اچھا بھائی یہ بتائیے کہ لوگوں پہ تو اعتراض کرنا بڑا آسان بھی ہے اور بڑا ہمارا اچھا مشغلہ بھی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بتائیے، نماز کے اندر 13 فرائض ہیں، 14 واجبات ہیں، 21 سنتیں ہیں، تو کیا خیال ہے ہم آپس میں اس کو دوہرا لیں، آپ کچھ بتائیں گے؟ انہوں نے تو مجھے تو نہیں آتے۔ 13 فرائض، 14 واجبات، 21 سنتیں، پھر مستحبات، مکروہات، مفسدات، پھر نماز سے پہلے وضو، وضو کے فرائض، وضو کے سنتیں، پھر اس سے پہلے غسل، اور اس سے پہلے زندگی جو گزر رہی ہے، اگر غور کریں گے تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہمیں جو احکامات ہماری طرف بالکل ڈائریکٹ براہ راست متوجہ ہو رہے ہیں اللہ کی طرف، ان میں سے اکثر کا ہمیں علم نہیں ہے، اکثر۔ اور یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور جو پڑھنا ہی جنہوں نے چھوڑا ہوا ہے اس کو اب آپ کیا کہیں گے، اس کے پاس کتنا علم ہے؟ تو یہ ایک بڑا ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، ہمیں اس اپنی ذاتی زندگی میں سے ہمیں اس جہالت کو دور کرنا۔ اور تھوڑا سا اور وسیع اس کو دیکھیں تو پھر جو مفتی صاحب نے بھی اپنے بیان میں اشارہ فرمایا کہ بھئی معاملات کا بھی دین ہے، معاشرت کا بھی دین ہے، اخلاقیات کا بھی دین ہے، ملنے جلنے رہنے سہنے کا بھی دین ہے، شادی بیاہ کا دین ہے، شکل صورت لباس کا دین ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ مزاحن فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بڑے بڑے ہپی بال رکھتے ہیں نا فیشن کے طور پہ، ان کا اصل میں یہ فرشتوں کے لیے ذرا آسانی پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو فرشتوں کو آسانی ہوگی، بالوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے جہنم میں داخل کریں گے، پکڑنے میں آسانی ہوگی، اس لیے ذرا فرشتوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ ہمیں تو بال بنانے، بال کٹوانے کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو پوری زندگی देखो एक आइडियल मुसलमान किसको कहेंगे, एक अच्छा मुसलमान किसको कहा जाए। देखो कलमा पढ़ के तो सब मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन कलमा पढ़ा जिस दिन शऊर आया मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हुए। लेकिन एक अच्छा मुसलमान किसको कहेंगे भाई, जिसको कोई इल्म ना हो कि मेरी जिंदगी जो गुजर रही है इस जिंदगी के गुजरने में जो मैं जिस तरीके से गुजार रहा हूं क्या इस पे अल्लाह ताला मुझसे राजी है। कोई अल्लाह अल्लाह बचाए अल्लाह माफ करे, कोई इस बात का तो कोई गम ही नहीं है, इस बात का तो कोई टेंशन ही नहीं। और बहुत सारे टेंशन है, बीवी भी टेंशन है, बच्चे भी टेंशन है, घर है तो भी टेंशन है, घर नहीं है तो भी टेंशन है, गाड़ी है तो भी टेंशन है, गाड़ी नहीं है। एक टेंशन नहीं है तो इस बात का नहीं है कि अल्लाह उनसे राजी है कि नहीं। घर तो खरीद लिया, गाड़ी तो खरीद ली, शादी तो कर ली, बच्चे तो हो गए, सब कुछ हो गया, अल्लाह राजी है या नहीं है इस बात का कोई गम नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं है इस बात का कोई टेंशन नहीं। ये भाई दोस्तों तो ये जहालत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जहालत को मिटाने के लिए आया हूं। पहली वही इक्रा, पहली वही इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो हमने क्या कहा, हमने ये स्कूलों का कॉलेजों का जो सदर दरवाजा होता है मेन गेट वही लिख के लगा दिया जी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। सुभानअल्लाह, कुफर पढ़ेंगे, इल्हाद पढ़ेंगे, सूद पढ़ेंगे और क्या कहेंगे, अल्लाह के नाम से नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो जिंदगी गुजारने के अहकामात हैं। एक आदमी दुकानदार है, उसको दुकानदारी के उसके ऊपर अहकामात लागू हैं। एक आदमी मुलाजिम है, उसकी मुलाजमत के अहकामात उस पर मुतवज्जे हैं, उस वक्त उसको देखा जा रहा है कि ये उन अहकामात पर मुलाजमत कर रहा है या नहीं कर रहा। इतना हल्का हमने इसको लिया और इतना हल्का समझा और जिंदगी गुजर गई, जिंदगी ही गुजर गई। जैसे उस्ताद ने फरमाया भाई 8 घंटे ड्यूटी है तो आपने जो 4 घंटे तो काम किया, बाकी 4 घंटे तो काम ही नहीं किया, काम मौजूद था काम तो नहीं किया, और उसके बाद कहते जी ओवर टाइम लगाए। मैं एक जमाने में स्टील मिल हमारे कराची में है ना, उसमें कुछ अर्सा मैंने काम किया वहां, तो वहां उस जमाने में कार्ड पंच होता था, सब बस लेके जाती थी हमें, टाइम ऑफिस कहते थे उसको, टाइम ऑफिस पे पहुंचे और वहां पे हर आदमी के नाम का एक कार्ड, उसकी जगह मखसूस थी, कार्ड निकाला और मशीन के अंदर डाला, उससे वो टाइम जो है उसका उस पर पंच हो जाता था, टाइम पर आप रात में देखा भी होगा। तो लोग क्या करते थे कि जिस दिन आंख नहीं खुली या जाने का दिल नहीं हो रहा, मूड नहीं हो रहा, छुट्टी करनी है, कोई काम है, नहीं गए ऑफिस, नहीं गए, अब नहीं गए तो क्या होगा कि उसका कार्ड पंच नहीं होगा, उसकी एबसेंट होगी, उसकी तनख्वाह उसके हिसाब से बनेगी। तो दोस्त को फोन करते यार आज मैं नहीं आ रहा, मेरा कार्ड जरा पंच कर देना, मेरा कार्ड तो अच्छा हो गया, कोई टेंशन नहीं। तो जनाब गाड़ी से उतरे, अपना भी कार्ड पंच किया, उसका भी कार्ड पंच किया, और फिर उसने जनाब 8 घंटे ड्यूटी की और ड्यूटी के बाद उसका 8 घंटे का ओवरटाइम लग गया, उसका जो आया था उसका 8 घंटे का ओवरटाइम लगा। जब उसने अपना 8 घंटे का ओवरटाइम करके फिर जब वो वापिस जाने लगा तो अपना भी कार्ड पंच किया जाने वाला, अपने उस दोस्त का भी कर दिया, तो उस दोस्त के भी 8 घंटे ओवरटाइम लग गया। कैसी समझदारी की बात है, कैसी अकलमंदी की बात है, वाह वाह कैसा कमाने का गुर आता है, वाह वाह बाप भी शाबाशी देगा, दोस्त भी शाबाशी देगा। ये तो मैंने आपको गुर बता दिया भाई, ये बात सीधे बताने की नहीं होती, क्योंकि जिसको नहीं पता होता उसको भी पता चल जाता है यार ये तो अच्छी तरकीब पता चल गई। लेकिन भाई दोस्तों ये सरीह हराम है, सरीह हराम। वो तो बात तो ये हो रही है कि 8 घंटे की तनख्वाह ली और काम 6 घंटे किया, तो इस 2 घंटे की तनख्वाह इसकी हराम है, और हराम जब हलाल के अंदर शामिल हो जाता है तो बाकी हलाल को भी वो नापाक कर देता है। तो यहां तो भाई तो ये जहालत जो है, अब देखो ना इस पे अगर एक आदमी इस तरह कर रहा है और उसको कोई टेंशन नहीं है, वो खुश है, और नौजुबिल्ला 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 बातें नकल करते हुए डर लगता है। तो एक साहब कहने लगे वो बेटा जो है वो सरकारी अफसर है, तनख्वाह तो थोड़ी है ऊपर की आमदनी बहुत है, तनख्वाह तो थोड़ी है ऊपर की आमदनी बहुत है, और इस पे खुश है बेटे। अब भाई दोस्तों इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कम से कम अगर अल्लाह किसी के दिल में डाल दे, और अच्छा इनसे तौबा जो है ना, इनसे तौबा भी ऐसे आसानी से नहीं होने की, अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह मेरी तौबा, तौबा हो गई क्यों भाई बोलो नहीं। ये उलमाए कराम से मुफ्ती हजरात से पूछना चाहिए, इस आदमी ने अपनी जहन्नम खुद अपने हाथ से तैयार कर ली है, अब इसको उसमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। सख्त मसला है। अब क्या हुआ उसकी वजह जहालत, मालूम नहीं, मालूम करने की कोशिश ही नहीं की, जरा सा दिल ने थोड़ा शुरू शुरू में, लेकिन फिर क्या हुआ जमीर भी शुरू शुरू में जरा कहता है कुछ जमीर जो है ना, बाद में वो जमीर को भी हम नींद का इंजेक्शन लगाते हैं, वही सो जाएगा तेरी जरूरत नहीं। तो अकायद का इल्म है, इबादात का इल्म है, मामलात का इल्म है, माशरत का इल्म है, अखलाकियात का इल्म है। अब एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है, ज़कात दे रहा है, रोजे रख रहा है, हज कर रहा है, उम्रा कर रहा है, हलाल कमा रहा है, लेकिन दिल के अंदर दुनिया की हिर्स है, दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है, क्या ये अल्लाह के नजदीक एक आइडियल मुसलमान है? दिल में दुनिया की मोहब्बत भरी है? और दुनिया की मोहब्बत पे अल्लाह ताला ने कुरान में और अहादीस में जो है वो मुजम्मत है, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी। अभी हम पढ़ रहे थे कि बाज़ लोग जो है वो बराह रास्त बगैर हिसाब किताब जानने में डाल दिए थे, यानी वो ज्यादा पूछ पछ भी नहीं होगी, भाई तुम्हारा फैसला हो गया तुम जानने में चले। तो साहबा ने पूछा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से गालिबन रिवायत कि यार सुनना ऐसे कैसे, यानी क्या ये लोग नमाज नहीं पढ़ते होंगे क्या, ऐसी इसकी वजह ये होगी नमाज, आप सुनने नमाज भी पढ़ते होंगे बल्कि तहज्जुद भी पढ़ते होंगे, लेकिन जब दुनिया उनके सामने आती थी तो बगैर तहकीक उसके ऊपर टूट पड़ते थे, ना हलाल देखते थे ना हराम देखते, तहज्जुद गुजार। तो अब ये दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो रही है और इसको दूर करना जरूरी है, इसका भी तो इल्म है ना, इसका इल्म भी तो हासिल करना होगा ना, नहीं करना होगा। नमाज पढ़ रहे हैं तो अब तो बिल्कुल ही बस आखिरी मोहर लगा दी हमने कि भाई अब तो हम नमाज पढ़ते हैं, आगे कोई भी आगे पीछे कुछ नहीं करना। ये अखलाकियात हैं, दुनिया की मोहब्बत दिल में अल्लाह की मोहब्बत से, आखिरत की मोहब्बत से, दीन की मोहब्बत से कम होनी चाहिए। अगर बढ़ गई तो फिर तो अल्लाह पाक कहते हैं फिर इंतजार करो। अब क्या है देखो, नफ्स की ख्वाहिश क्या है और अल्लाह का हुक्म क्या है कि अल्लाह का हुक्म मालूम किया, अब उसके मुकाबले में नफ्स की ख्वाहिश भी पैदा हुई कि वो उस या तो अब नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करेगा या अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा। अब ये इम्तिहान रोजमर्रा हमारे साथ मुस्तकिल दिन रात सुबह शाम हमारे साथ चलता रहता है और मिनट मिनट पे हमारे साथ ये हमारे ऊपर आता रहता है। और आदमी जो जो फैसला उस वक्त अभी ये कर लिया, अब इस वक्त नफ्स की ख्वाहिश पे अमल कर लिया अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया, नफ्स की ख्वाहिश पे अमल कर लिया अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया, नफ्स की ख्वाहिश पे अमल कर लिया हुजूर की सुन्नत को छोड़ दिया, तो पूरे 24 घंटे का एक थैला अमाल का तैयार हो गया ना, ये लिख लिया ना उसने। और ये इंसान जो है मुसलमान जो है कितना ला इल्म है, कितना इन्नहु काना जलूमन जहूला, उसी साहब ने वो जो आयत पढ़ी उसका आखिरी हिस्सा यही है ना, इन्नहु काना जलूमन जहूला जहालत। वो ये बड़ा मर्ज है भाई, मर्ज बहुत दूरी पैदा करने वाला है, अल्लाह से बहुत दूरी पैदा कर। इसलिए भाई इसका हल जो है ना जी वो इल्मी मजालिस है, उलमाए कराम बड़े मुफ्ती हजरात जो हैं वो जो कुरान और हदीस के दर्स देते हैं, तो हमें उनकी मजालिस को एहतमाम के साथ उसमें शरीक होना चाहिए। अगर मस्तूरात का इंतजाम हो तो मस्तूरात को भी ले जाइए, वरना जो सुने वो आके अपनी मस्तूरात से भी उसका मुजाकरा करेंगे। इल्मी मजालिस खुद जरूर। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले जमाने की जो जो कुरान के तर्जुमे और तफासीर हैं वो जरा चूंकि थोड़ी कदीम हो गई थी तो अल्फाज जो है थोड़े उस दौर के जरा मुश्किल अल्फाज थे और इतने वो बा मुहावरा ऐसे होते थे कि वो आज के जमाने में खासतौर पे नौजवान नस्ल को पढ़ना समझना जरा मुश्किल होता था। इसलिए हम ये अर्ज करते थे कि भाई ये जो भी पढ़े कुरान की तफसीर तर्जुमा वो उलमाए कराम की निगरानी में पढ़े ताकि कोई बात जो है गलत ना समझ ले उसको। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मदरज़िल्लुहुम आली उन्होंने आसान तर्जुमा कुरान के नाम से वो इतना बासलीस तर्जुमा कर दिया है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल कोई भी समझने में दुश्वारी जो है ना वो पैदा नहीं होती। तो अगर उसको भी इंशाल्लाह हम नियत करें कि उसको हम पढ़ें और फिर भी अगर कोई बात समझने की हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह बड़े उलमाए कराम मुफ्ती हज़रात मौजूद हैं, उनसे पूछ भी। लेकिन वो इल्मी मजालिस जो है ना उसको उस पे जाना बहुत जरूरी है, वो फिर उसमें उसकी हर क्योंकि अभी जो हम ये जो मैंने अर्ज किया इसमें तो सिर्फ तर्जुमा और मुख्तसर सा उसका हाशिया है, लेकिन उसमें जो अहकाम हैं वो तो फिर वे उलमाए कराम अपनी उन इल्मी मजालिस में ही बताते हैं। तो एक तो भाई ये है और दूसरा जो हमारा बड़ा मसला है मुश्तरका मसला है वो गफलत है, एक जहालत है और दूसरे क्या है गफलत के माने क्या है कि बस जो चीज हमारे इर्द गिर्द है बस उसी में इतने महर हैं कि अल्लाह को मौत को कबर हशर आखरत बिल्कुल गाफिल भूले हुए सामने नहीं है। बल्कि अब तो बड़ा फैशन हो गया, कब्रिस्तान में भी लोग बिजनेस डील कर लेते हैं, मुर्दे को दफनाने गए, भाई तुम क्या करते हो यार, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, अच्छा जी आजकल तो मैं ये कर रहा हूँ, अरे मेरा भी ये है, चलो काट दो फिर मुलाकात करें, बिजनेस डील हो रही है कहाँ। तो कब्र में जाना है एक दिन, जैसे मैं किसी को लेके आया हूँ कब्रिस्तान में, अनकरीब लोग मुझे लेकर आने वाले हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जाना तो इसके लिए, इसका जो अजर आया है सवाब आया है, इसलिए कब्रिस्तान जाके मौत की याद ताजा होती है। आप बिल्कुल सच सच देखें, दिल पे हाथ रख के बताएं, मौत हमें कितना याद रहती है। 24 घंटे को अगर आप शुमार कर लें तो कितना वक्त हमें मौत याद रहती है, और कितना वक्त हमें अल्लाह का ध्यान रहता है। अब तो भाई माजरत के साथ गुस्ताखी ना हो जाए, तो भाई मस्जिद भी आए, नमाज भी पढ़ी और पढ़ के चले भी गए, अल्लाह ताला का कोई भी ख्याल तक भी नहीं आया। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब बंदा नमाज शुरू करता है तो अल्लाह ताला पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है, अपनी शान के मुताबिक पूरी तरह अल्लाह ताला इस बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। लेकिन ये बंदा जो नियत तो बांधी, मगर ध्यान इसका नियत बांधने से पहले भी कहीं था, और नियत बांधते वक्त भी कहीं था, और नियत बांधने के बाद भी कहीं था। अल्लाह पाक थोड़ी देर के बाद उससे अपनी शान के मुताबिक उससे कलाम फरमाते हैं कि मेरे बंदे तुझे क्या हो गया, मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ, मेरे से क्या तुझे अच्छी चीज नजर आई जो तू उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। एक दफा आवाज दे, फिर भी बंदा लगा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हुआ है, कोई अमेरिका पहुंचा हुआ है, और कोई कराची पहुंचा हुआ है, कोई लाहौर पहुंचा हुआ है, कोई दुकान में पहुंचा हुआ है, कोई घर में पहुंचा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद अल्लाह ताला फिर उसको आवाज देती, मेरे बंदे मैं तेरे सामने हूं, मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूं, मुझसे अच्छी क्या चीज तुझे नजर आई जो तू उधर उसकी तरफ मुतवज्जे है। फिर भी बंदा मुतवज्जे नहीं। फिर तीसरी दफा भी आवाज आई, तीन दफा आवाज, और फिर फरमाते हैं कि भाई मेरे बंदे को तो मेरी जरूरत ही नहीं है। फिर ये कह के अल्लाह पाक अपनी तवज्जो हटा दे। तो गफलत का कोई आलम है भाई, गफलत की कोई इंतहा है कि अल्लाह के सामने खड़े होकर भी अल्लाह से काफिल। इसकी नमाज इसको कहां पहुंचाएगी, कहां पहुंचाएगी। तो ये गफलत भाई दोस्तों हमारी बड़ी बीमारी है। हदीस शरीफ में आया भाई मौत को, देखो ये आया कि सबसे ज्यादा अकलमंद और समझदार शख्स वो है जो मौत को याद रखे और मरने के बाद काम आने वाली चीजों की तैयारी में मशगूल हो। समझदार आज हमारे पूरे 24 घंटे उस मरने से पहले पहले तक की तो जो फिक्र हो सकती है वहां तक तो जाती है नजर, और फिक्र उससे आगे नहीं जाती, जाती बोलो भाई। गफलत से भरी हुई है दुनिया, गफलत से भरी हुई है। बाजार के अंदर जाके चौथा कलमा पढ़े तो 10 लाख निकियां या 20 लाख निकियां मिलती हैं। क्या वजह है? बाजार जो है गफलत का माहौल है। खरीदने वाला अपने खरीदने के ख्याल में गुम है, बेचने वाला अपने बेचने के ख्याल में गुम है, अल्लाह से सब गाफिल है। जो बाजार में जाके अल्लाह को याद करे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह को याद कर रहा है। ये गफलत के माहौल के अंदर हो, ये तो मुर्दों के अंदर से एक जिंदा आ गया। इसका दिल गाफिल है, हदीस पाक में आया वो मुर्दा है, मुर्दा दिल गाफिल। बैतुल्ला के अंदर अल्लाह, बैतुल्ला में जाके भी जिसका दिल गाफिल हो उसका दिल कहां जिंदा होगा? एक दफा हम हरम शरीफ में थे तो हतीम के अंदर जो है वो शुरते बैठे हुए थे, उन्होंने 8-10 लोगों को पकड़ा हुआ था, हतीम के अंदर उनको बिठाया था और दोनों तरफ से जो है जो उन्होंने पहरा बिठाया हुआ था। अरे ये तवाफ के दौरान लोगों की जेबें काटते तवाफ करने, मुझे बड़ी इतनी शदीद तकलीफ हुई। मैं उनके चेहरे देखूं, मेरा दिल करे मैं उन सूरतों से कहूं भाई यार उनको छोड़ दो, मेहरबानी करो ये आइंदा नहीं करेंगे यार। मगर हमारे जो अमीर थे वहां के अजाज भाई हट जाओ यहां से, जरा बात भी करोगे ना इस शक में आपको भी पकड़ लेंगे कि इनके साथ इसका भी कोई ताल्लुक, यार हट जाओ वहां से देखो भी नहीं इनको। गफलत का कोई आलम है? भाई दोस्तों, बुजुर्गों दोस्तों, गफलत को दूर करना चाहिए। मुश्तरी का मसला है ना, मैंने इसलिए शुरू में अर्ज किया, हमारा मजाक रहा है, हमें इसके बारे में सोचना है, जहालत को भी दूर करना है और गफलत को भी दूर करना है। जब आदमी झूठ बोलता है तो राई के दाने के बराबर भी ईमान उसके दिल में नहीं रहता, इतना गाफिल हो जाता है ये अल्लाह से, इतना गाफिल हो जाता है जब झूठ बोलता है। झूठ बोलना आजकल तो बड़ा फैशन है, गफलत का इलाज जो है वो अल्लाह को याद रखना है, अल्लाह को याद रखना। इतनी मशक कर लें, इतनी मशक कर लें कि 24 घंटे में कोई भी लम्हा हमारा ऐसा ना हो जिसमें हम अल्लाह से गाफिल हो जाए। अल्लाह से आदमी बंदा कैसे गाफिल हो सकता है? लेकिन इसकी मशक बड़ी है, बड़ी मशक है। साहबा इकराम ने इतनी मशक की, इतनी मशक की, इस्तंजे के लिए जो ढीले इस्तेमाल करते थे ना पत्थर, उस उन ढेलों में से उनको अल्लाह अल्लाह की आवाज आती थी तो परेशान पत्थर के अंदर से अल्लाह की आवाज आ रही है उसको हम इस्तंजे में कैसे इस्तेमाल करें? हुजूर से अर्ज किया गया अरसल्लाह बहुत परेशान है, आपने फरमाया उस पत्थर को लेके 3 दफा ऐसे झाड़ लिया करो, 3 दफा। हर वक्त अल्लाह याद है, हर वक्त अल्लाह याद है, फाइन अल्लाह सुना ना आके तुमने सुना है? सुनाऊ
सुना है
वो बकरियां चराने वाला उसको कहा भाई एक बकरी हमें दे दो, हम तुम्हें पैसे भी देंगे और इसका हमें तुम्हें गोश्त भी खिलाएंगे। उन्होंने कहा मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, मैं तो चला रहा हूं। तो भाई कह देना भेड़िया खा गया, इसमें क्या है, भेड़िए तो आते रहते। और फाइन अल्लाह फाइन, अल्लाह कहां चला गया, अल्लाह कहां चला गया, फौरन ध्यान कहां गया,
अल्लाह।
अब मैं सच्ची सच्ची बताऊं भाई, नाराज अगर ना हो, हमने तो अल्लाह ताला को गुम कर दिया। नऊज़ुबिल्लाह, मुझे माफ करना अगर बात सच लगे, मगर हमें तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला है ही नहीं। ऐसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, अपने अमल से तो हम जबान से नहीं कह रहे, अमली तौर पर हम ये साबित कर रहे हैं कि जैसे गोया नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह होता तो हम हमारी जिंदगी ऐसी ना होती, हमारी शक्ल ऐसी ना होती, हमारा किरदार ऐसा ना होता, हमारे मामलात माशरत मिलना जुलना, हमारा शादी ब्याह ऐसी ना होती। अगर आप सोचें कि जो अल्लाह को नहीं मानते उनकी जिंदगी क्या है, और हम कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं हमारी जिंदगी क्या है, अब उसमें फर्क निकाल लीजिए क्या है। फर्क होगा तो पता चलेगा ना, फर्क तो कोई इल्ला कलील माशाल्लाह। और भाई जाहिर जाहिर जो है ना, जाहिर में कोई इकरार नहीं, थोड़ी गलत फहमी जरा इधर भी लग जाती है कि जाहिर को इख्तियार करके समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि क्या कहूं, जिसका बातिन उसके जाहिर से भी अच्छा हो वो मोमिन है, जिसका बातिन उसके जाहिर से भी अच्छा हो वो मोमिन है, जिसका जाहिर उसके बातिन से अच्छा हो वो मुनाफिक है। वो जाहिर तो बनाया हुआ लोगों को भी दिखा रहे अंदर से, बस जरा सा मामला पड़े तो पता चलता है, जरा सा मामला पड़े फिर पता चलता है। अरे मैं तो बल्कि मैं अर्ज किया करता हूं कि हर आदमी ने अपने ऊपर एक हॉल चढ़ाया हुआ है, एक और इतने आदमी मिलना मुश्किल है। जाहिर कुछ है बातिन कुछ, ऊपर कुछ है अंदर कुछ है। हमारे वो जो कराची में जो सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है ना, जोड़िया बाजार कहते हैं उसको, सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। क्या कहूं यार, दिल की बातें हैं, जरा आप अगर माफ कर देना मुझे। तो जो सबसे बड़ी मार्केट है वहां पे ये आम लोगों के अंदर ये बात अब मशहूर हो गई है कि जो जितना जाहिरी तौर पर दीनदार होगा ना वो सबसे ज्यादा खराब माल बेचेगा, दिखाएगा कुछ। अब आपने उसको जाहिर देखा, कर भाई ये आदमी सबसे ज्यादा धोखा जो है ना वहीं से मिलेगा जिसका जाहिर अच्छा बना हो। और ये हम अपने जाहिर को बेच रहे हैं दुनिया की खातिर, बेच रहे हैं लोगों के लिए जाहिर को अपनाया हुआ। मौलाना तारिक जी के साथ एक दफा हम सफर किया था कुछ सालों पहले की बात है, तो वो फरमाते थे हम जब रायवन में थे और वहां से जब दौरादीश किया और आलिम बने, तो आखिर आखिर में जो बुजुर्गों से नसीहतें लेने के लिए हम जाते थे ना, तो मौलाना जाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके पास हम गए कि आप भी कुछ नसीहत फरमाने, तो कहते उन्होंने हमें एक ही नसीहत की थी कि रायविन की नस्बत को बेचना नहीं, रायविन की नस्बत को। और ये कहते कहते सारो कतार मौलाना तारिक जमी साहब रोते कि उन्होंने हमें ये फरमाया था लेकिन हम उसका नहीं कर सके। इंसान अपने दीन को भी बेचता है दुनिया की खातिर, अपने जाहिर को बना के जाहिर को बेचता है दुनिया का नफा हासिल करने के लिए। तो इसलिए भाई दोस्तों वो ये सब की वजह है कि अल्लाह से गफलत है, मौत से गफलत है। मस्त है मस्त दुनिया में, तो इसके लिए ये जो जिक्र की जो मश्क होती है ना, ये भी इसलिए होती है कि कभी तो वो वक्त आएगा इंशाल्लाह करते 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 कि फिर हमारा दिल जो है अल्लाह की याद उसके अंदर जम जाएगी। फिर जब हम अपने मकाम पर होंगे, अपने शहर में होंगे, अपने कारोबार पर होंगे, अपनी मुलाजमत पर होंगे, फिर हमें अल्लाह याद है। फिर ये दिल जो है ना ये आपको आवाज देगा, फिर गुनाहों से बचना आसान है। अभी तो इनिशियल स्टेज है, इब्तदाई मरहले में, जैसे मैं हूं 30 साल से इब्तदाई मरहले में ही चल रहा हूं, अभी तक हकीकत का कुछ पता नहीं है, अभी तक डंडियां मार रहे थे। तो भाई दोस्तों वो इसमें हमें थोड़ी सी अपने साथ जो है ना अपनी रियायत कर ले भाई। आजकल वो जुमले मशहूर ना अंग्रेजी में पहले चलता था, उर्दू में तो नहीं था, टेक केयर आखिरी में जाते थे ना टेक केयर, अब वो उर्दू वालों ने भी इसको अपना भाई अपना ख्याल रखना अपना ख्याल। तो मैं भी कहता हूँ भाई अपना ख्याल कर लो खुदा के वास्ते, ये जहालत को दूर करो, गफलत को दूर करो, अपना तो दूसरों का इतना ख्याल करते, अपना तो कुछ ख्याल करो। करेंगे भाई कौन कौन करेंगे, ये हाथ उठाने से सब पास हो गए, पास तो वो होगा जो अमली तौर पर इंशाल्लाह मशाइख के साथ जुड़ के और उलमाए कराम के साथ जुड़ के अपने रोजमर्रा के मसाइल को मालूम भी करें और फिर जिक्र की कसरत के साथ साथ जो है फिर अपने इस दिल की गफलत को दूर करें और इसको टेस्ट करते रहें कि भाई अब कितना हो गया। अब दुनिया में हम कारोबार पर बैठे होते हैं, तराजू हाथ में होता है, उस वक्त कितना ख्याल आ रहा होता है अल्लाह का, टेस्ट करें। फिर कमी हो तो फिर पूछ लें, फिर कमी हो फिर पूछ लें, फिर अल्लाह कुछ दे दे फिर आके बताएं अल्हम्दुलिल्लाह जी हजरत इतना हो गया। मुझे तो भूलता नहीं है कि जब अल्लाह ताला नसीब फरमा दे भाई, हमारे दोस्त हैं दुबई में या कहाँ जॉब पर थे, कोई एक फ्रॉड था वो पकड़ा उन्होंने, तो वो जो मालिकान थे वो मालिकान आपस में पार्टनर एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहे थे, तो जो फ्रॉड पकड़ा उन्होंने तो वो जिन्होंने फ्रॉड किया था उन्होंने इनको ऑफर की $1 million, $1 million या दिरहम, आपको हम हर महीने देंगे, आप ये फ्रॉड जो है ना लोगों को ना बताएं, हमारे दूसरे पार्टनर्स को ना बताएं, 10 लाख दिरहम महीने के आपको देंगे। मैंने हिसाब लगाया तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं, कितने 2.5 करोड़ महीने के ले ले तो साल में कितने हो जाएंगे भाई, 25 करोड़ और 5 करोड़ 30 करोड़ रुपए साल के हो जाए, 2 साल में 60 करोड़, 10 साल में कितने हो जाएंगे। मगर उन्होंने उसी वक्त इस्तीफा लिख के दे के नौकरी छोड़ के पाकिस्तान आ गए, लगा भाई मेरी ईमान का लेवल है ना। हम तो शायद 100-200 रुपए में ही बेचते हैं ईमान को, नहीं तो 1000-2000 में तो सारे ही निमट जाएंगे, 1-2 लाख की तो बात ही क्या है। तो भाई ईमान को मजबूत करना, اور اللہ کی یاد. ایک اور بات سنا دو پرانی. ایک سرکاری افسر تھا, اس کے پاس دفتر میں بیٹھا تھا, دو آدمی آئے, آ کے انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئے. ایک بریف کیس تھا, بریف کیس کھولا, اس کے اندر ہزار ہزار کی نوٹیں, پورا بریف کیس بھرا ہوا تھا, اور ایک بندوق نکالی اور ایک فائل نکالی. انہوں نے کہا, بھائی یہ فائل پہ آپ سائن کر دو, یہ بریف کیس آپ لے لو, اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر یہ گولی ہے, ہمیں پورا آرڈر مل چکا ہے اور یہ ہمیں دو میں سے ایک کام کر کے جانا ہے. سمجھ آئے گی سچویشن, سمجھ میں آئے گی؟ تو وہ جیسے جھک کے کام کر رہے تھے نا ٹیبل پہ, سب کام چھوڑ کے نا اپنی کرسی سے یوں کر کے انہوں نے ٹیک لگا لیا, آرام سے یوں بیٹھے. ہم کہا, اچھا بھائی آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دو, پھر آپ جو کہو گے وہ میں کر لوں گا. وہ سوال یہ ہے کہ اگر میں اس فائل پہ سائن کر دوں اور یہ 10 لاکھ روپے میں آپ سے لے لوں, اور پھر جب میں مروں گا تو مرنے کے بعد جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا, جی آپ سیدھے جہنم میں جائیں گے. اتنا تو عقل ہے نا. انہوں نے کہا, اچھا اور اگر میں سائن نہ کروں اور آپ مجھے گولی مار دیں تو پھر میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا, آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. انہوں نے کہا, بس یار مجھے جنت میں جانا ہے, جو تمہیں کرنا ہے کرو. مجھے کہاں جانا ہے؟ تو تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے اور بریف کیس بند کر کے فائل لے کے باہر چلے. تو ہمارے روزمرہ کے جو کام ہیں ان پہ ہماری جنت جہنم بنتی ہے. بیوی سے بات چیت کرنے میں نا جنت جہنم بن رہی ہوتی ہے, بچوں سے بات کرنے میں جنت جہنم بن رہی ہوتی ہے, پڑوسوں کے ساتھ سلوک کرنے میں, ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کرنے میں جنت جہنم بن رہی ہوتی ہے, کاروبار ملازمت معاشرت معاملات میں جنت جہنم روز کی بن رہی ہوتی ہے ہماری, اور یہ ہم اپنے اختیار سے اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالم ہے. کہیں گے بھائی پکی پکی نیت کرو یار, کچی کچی نہیں. پھر جب اگلی دفعہ ملاقات ہوگی تو بتاؤ گے مجھے؟ چلو اللہ کرائے گا. ذکر کی مشق کر لیں. اللہ پاک جزائے خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. سلمان قاسم استو جعفر است با یزید و گل حسن جیدی علی تاجی سرس یوسف استو غجدوانی عارف و محمود هم از علی رام تنی سماس شمس خاول است شاہ کلال استو بہاوتین علاوتین ولی خواجہ یعقوب عبید اللہ بفضل داور زاہد و درویش و خواجہ ام کنگی باقی بحق احمد و آدم بنور و
شیخ سعدی خواجہ یحییٰ استہم عبد الشکور عبد الرزاق حضرت محمد صفا شکیل محمد انور شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام تیز نامت یا خدایا در بدون خوشتر شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام صفی مقبول احمدی نقش بندی مولا اللہ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمته